ओम शांति।
आज के इस सत्र के प्रमुख वक्ता है आदरणीय किरणा देवी जी। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से एजुकेशन किया। आप पिछले 31 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। संस्था के वरिष्ठ दादियों दीदियों के आध्यात्मिक जीवन को देखकर प्रेरणा लेकर आपने अपना जीवन आध्यात्मिक सेवा में समर्पित किया। पिछले 22 वर्षों से मुंबई के विले पार्ले सेवा केंद्र पर आप अपनी अमूल्य सेवाएं समर्पित रूप से दे रहे हैं। आप एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है और बिजनेस विंग के फैकल्टी मेंबर है। विंग की सेवाओं के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार यात्राएं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस आदि में आपने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। आपकी वाणी में मधुरता और ईश्वरीय स्नेह महसूस होता है, जिसके कारण अनेक भाई बहनों को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। अनेक व्यापार संगठनों, उद्योग समूहों, कंपनियों में आपने सेल्फ मैनेजमेंट, तनाव मुक्त प्रबंधन आदि अनेक विषयों पर कार्यक्रम कराए हैं। सेवा के निमित्त आपने इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, दुबई और हांगकांग आदि देशों में भ्रमण किया है। आज के इस संध्या के सत्र में परमात्मा शक्ति की सुसंगति कार्यशाला पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय किरणा दीदी का फूलों से स्वागत किया जाए। ओम शांति।
धन्यवाद साधना बहन और माधवी बहन, सभी के सहयोग से ही एक कार्यक्रम भी सफल होता है। हर एक का जो रोल है, भले स्टेज पर हो या स्टेज के पीछे हो, पर हर एक जब बेहतरीन रीति से उसे बजाता है तब सारे कार्यक्रम की शोभा होती है। एक कुर्सी भी अगर है और उसका एक किला लूज है तो क्या होगा? कभी भी कुर्सी को कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे संसार में हर एक का कोई ना कोई पात्र है और हर एक को वो पात्र बहुत अच्छी तरह बजाना है, तभी ये संसार रूपी नाटक चलता है। केवल यहां आकर के हमें ये सोचना है कि मेरा वास्तविक रूप में क्या पार्ट है। वैसे तो असंख्य मनुष्यात्माएं हैं, अगर सबका देखने जाएंगे तो फिर अपना देखने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। जब यहां आते हैं ना तो ये एक मौका मिलता है कि हम बाकी सब कुछ भूलकर अपनी तरफ देखें। हमारी दादी जानकी जो मुख्य प्रशासिका जी है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, या तो आप विंडो से देख सकते हो या आप मिरर में देखो, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि जब विंडो से देखते हैं तो और सब कुछ दिखाई देगा लेकिन आप खुद को नहीं देख सकेंगे। रंग बिरंगी दुनिया दिखाई देगी पर उसमें मैं कहां हूं, मुझे क्या करना है, मैंने क्या पाया, ये तो नहीं अनुभव होगा। लेकिन जब हम मिरर में, आईने में देखते हैं, तब औरों के साथ हम खुद को भी देख सकते हैं, खुद को भी जांच कर सकते हैं। बल मिरर में तो केवल आप शारीरिक रूप से अपने को देख सकते हो, लेकिन एक छोटा सा दाग भी होगा तो आप क्या करेंगे? तुरंत कुछ करने जाएंगे ना, उसके लिए नहीं अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर हम आंतरिक रीति से सोचते हैं, हमारे पास भी आईना है, वो वाला नहीं, ज्ञान का आईना। तो ज्ञान के आईने में ना हम स्वयं के आंतरिक रूप को भी अच्छी तरह देख सकते हैं, तो हम और आगे अपनी पर्सनालिटी को बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं प्राप्त कर सके, आयु भले कोई भी हो, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और आज का तो सब्जेक्ट ही सबसे ऊंचा है, भगवान की शक्ति या भगवान स्वयं हमारे जीवन में कैसे जुड़ सकते हैं। कोई कारण तो होना चाहिए ना, बिना कारण कुछ होता है क्या? कई लोग अपना अनुभव सुनाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए या साक्षात्कार हुए उसके लिए, पर वो कब हुए? जब वो सचमुच भटक गए थे और वो कोई कारणवश कोई जगह पहुंचे और उन्हें वो मौका मिला, वो अनुभव कर सके या साक्षात्कार हुआ। एक बार सोक्रेटिस के पास, एकदम महान विचारक सोक्रेटिस के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगे कि मुझे अभी तक भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, मुझे बड़ी इच्छा है। बोलते अच्छा, बहुत इच्छा है। बोला हाँ ठीक है, कल सुबह आना, मैं हमेशा नदी के किनारे आपको सुबह मिलूंगा, आप वहां आना, मैं आपको बताता हूँ। बोला ठीक है। वो तो बराबर टाइम पर पहुंच गया। पहुंच के फिर सोक्रेटिस उठे, जहां से बैठे थे, उठकर के पानी की ओर चल पड़े और कहा तुम भी मेरे साथ चलो। वो भी चल पड़ा। फिर पानी में अंदर थोड़ा गए, पांव भी भीग गए और आगे गए, कमर तक पानी आ गया। वो तो भाई सोच ही रहा था कि अभी होगा कुछ, होगा कुछ होगा, लेकिन तब तक भी कुछ नहीं हुआ। फिर और गहराई में गए और गले तक पानी आ चुका था। और अचानक सोक्रेटिस ने क्या किया, एकदम उस व्यक्ति के डुबो दिया। वो क्या हो गया होगा, एकदम तड़प उठा। और एकदम तड़पण जब उसकी हुई ना, तब उसने सोक्रेटिस ने उनको निकाला बाहर और कहा अच्छा बताओ इस क्षण में तुम्हारी क्या इच्छा थी। तो बोला जीवन, श्वास। बोला और कुछ नहीं। तो बोला नहीं और कुछ आएगा भी कैसे? तो बोला बस, जब ऐसी मन की स्थिति होगी ना, जब और कुछ भी नजर नहीं आएगा पर एक तीव्र इच्छा होगी, तब वो अनुभूति होती है। और आज हम कैसे संसार में जी रहे हैं, जहां सब कुछ वैरायटी, एक चीज की हजार वैरायटी मिलती है, पता ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या लूं क्या नहीं लूं। अब ऐसे समय में कोई एक इच्छा तीव्र होना तो असंभव बात है ना, बहुत सारी इच्छाओं के साथ हम जीते हैं। एक और व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आए और कहा मुझे परमात्मा दर्शन की तीव्र इच्छा है, आप प्लीज मुझे बताओ कि कैसे मुझे होगा, मैंने बहुत अलग अलग तरीके से किया है लेकिन अभी तक मुझे नहीं हुआ। तो फिर गौतम बुद्ध जी ने भी यही कहा, कैसे काम करो आप है ना, इस गांव में हर एक घर में जाकर के हर घर से यही प्रश्न पूछना कि आपकी इच्छा क्या है, आपको जीवन से क्या चाहिए। तो अगर एक भी घर ऐसा कहे कि मुझे भगवान चाहिए, तो मुझे आकर बताना। तो जैसे वो हर सुबह से निकल गया वो काम के लिए और हर घर में जाए पूछे, तो कोई बोले मुझे धन संपत्ति चाहिए, कोई कहे हमारे पास संतान नहीं हमें संतान चाहिए, कोई कि हमको इतना बैंक बैलेंस होगा तो हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बड़े कर सकेंगे, कोई कुछ कोई कुछ, कोई पोजीशन, कोई धंधे के बारे में अलग अलग बातें बताई। तो वो तो एकदम हार गया ये सोच के कि किसी एक ने भी नहीं बताया कि मुझे भगवान चाहिए। और वो जब बुद्ध के पास आए तो बुद्ध ने कहा जब इच्छा ही नहीं है अंदर मिलेगा कहां से। अब इच्छा भी कब होगी कुछ कोई बता सकता है? भगवान को पाने की इच्छा कब होगी जी? संकट में रहते तो भगवान को पाने की इच्छा होती है। तो इच्छा क्या है आपकी? संकट से पार होने की। भगवान की इच्छा तो नहीं है। और जी दिल से क्यों होगी? क्यों होगी? बिना कारण कोई भी बात नहीं होती है। मुक्ति पाने के लिए वो तो अभी पता नहीं कौन सी डेट पे आएगा ना। मुक्ति पाने के लिए इच्छा कौन सी डेट पे आएगा? शांति के लिए। शांति के लिए माना हर साल जाते हैं ना हिल स्टेशन, परिवार को घुमाने के लिए, हाँ ऑफिस से दूर शांति मिल जाती है ना, संतोष हो जाता है ना, है ना? शांति मिल गई नहीं, मिल जाती है तभी तो जाते हैं आ जाते हैं। तो भगवान को मिलने की इच्छा कब होगी? शक्तियां क्यों चाहिए? कौन सी शक्तियां? आग पे चलने की, पानी पे चलने की, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। वो तो सब प्रयत्नशील है ना, मनुष्य को इतना सारा दिया गया है कि वो हमेशा इसी बात में प्रयत्नशील होता है कि मैं कैसे काम करूं, आगे बढ़ूं। और कोई बात? जब प्रेम होता है भगवान से। दुनिया में प्रेम कब होता है? दुनिया में प्रेम कब होता है? जब याद आती है तब। याद कहाँ आती है? मन में, है ना? मन में याद आती है। किसी की एकदम तीव्र याद आवे उसका भी कोई आधार होगा ना। तीव्र याद कैसे? अपने से दूर हो जाता है व्यक्ति तब याद आता है। वेरी गुड पॉइंट। फील होता है ऐसा कि इच्छा इसलिए नहीं होती है कि शायद वो बहुत दूर हो गया है। रोज मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर मस्जिद वेर एवर चर्च कहां भी, रोज हफ्ते में एक बार कभी कभार जाते हैं। पर याद कब आएगी? जब कोई व्यक्ति बहुत दूर हो गया हो, फिर वो तो अलग चीज हो जाती है ना। फिर कहीं किसी ने कोई मदद कर ली तो आप कहने लगेंगे अरे आप ही मेरे लिए भगवान है कि नहीं? ऐसा ही हो जाता है ना। तो फिर भी हम भगवान से दूर ही रहेंगे। फिर हम ऐसी डालियां पकड़ लेते हैं कि हाँ इससे मुझे मदद की, आप ही मेरे लिए भगवान हो। पकड़ ली डाली, फिर वो इच्छा खत्म भगवान को पाने की। और जब ये शब्द है, ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, ये शब्द है, तो कुछ तो कारण होगा ना वो शब्द होने का। फिर हम कोई और को अगर चुन लेते हैं तो फिर वो तो रह जाएगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हम कहीं बीच रास्ते में अटके हुए हैं? ऐसा लगता है? जिनको लगता है हाथ खड़ा करें। बीच रास्ते में कहीं अटके हुए हैं? पाया तो है, ऐसा नहीं है पाया नहीं है, पर ऐसे लगता है जैसे वहां कहीं बीच रास्ते में अभी तक भी खड़े हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। इसकी निशानी है जीवन की संतुष्टता। केवल एजुकेशन या जॉब या पोजीशन या मान्यता उस रीति से नहीं, जब अकेले बैठे हो, जब वो उसमें से भी कई चीजें छूट गई हो, उसके बाद भी आप एक बच्चे की तरह मुस्कुरा सको, वो है जीवन की संतुष्टता। चाहिए अपने को, चाहिए ऐसा कि अभी तक भी डाल पकड़ी हुई है ना कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, धन होगा तो ही मैं मुस्कुरा सकता हूं, मेरे पास घर होगा छत होगी तो ही मैं मुस्कुरा सकता हूं। सोच लो कहां पर आप अपने को रख रहे हो। अच्छा, ईश्वर होंगे तो सब चीजें आ जाएंगी, ये कहीं पढ़ा है आपने, किसी ने बताया है या अभी अंदर से आया? पढ़ा है, हम सबने कोई ना कोई रीति से पढ़ा है, राइट। यहां बैठे हैं आप केवल सुनने के लिए नहीं, क्योंकि हम जो बताएंगे वो कोई नई बात नहीं है, वही बात है, पर आप बैठे हो अनुभव करने के लिए, फील करने के लिए, वही चीज जो आपने पढ़ी है आपने सुनी है, अब आपको कहां अंदर फील करना है, फील करके जाना है, अपने में भर के जाना है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। थैंक यू सो मच। पर ऐसे कई होंगे ना जो कहते हैं हम भगवान में नहीं मानते हैं, कोई है कि हम भगवान में नहीं मानते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है, पर वो कोई पापी नहीं है। भगवान को मानने वाले भी पाप कर सकते हैं, उसका डिफरेंस नहीं है, पर हो सकता है आप जीवन के ऐसे कटु अनुभवों से गुजरे हो जो उसके रिजल्ट में आपने सोचा कि मुझे नहीं लगता है उसका अस्तित्व है, नहीं तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता था, ऐसे औरों के साथ भी नहीं होता था, कहीं जो है वो दुखी नहीं है, लेकिन संसार की जो दुख की हालत देखते हैं ना उससे उनको फील होता है मैं नहीं मानता। और कईयों ने इतनी खुद मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, रात दिन मेहनत करके अपना नाम कमाया है, वो कहते किया तो मैंने है, भगवान कहां आया उसमें बीच में, अपने हाथ जगन्नाथ, ऐसे कहने वाले भी बहुत होते हैं। तो आज हम सब अलग अलग विचारधाराओं से जी रहे हैं, आज हम केवल ये देखेंगे कि अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो उसका मेरे जीवन के साथ क्या संबंध है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन, स्वयं की अनुभूति हमें परमात्मा की अनुभूति तक ले जाते हैं। जिसने अपने आंतरिक जगत के द्वार को बंद कर दिया है वो कुछ भी करे, कितना भी तप करे, भगवान को नहीं पा सकता है। इसीलिए गीता में भी दिया गया है कि जप तप माला फेरने से, मंदिर में पूजा करने से, अर्चना करने से आप मुझे नहीं पा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो द्वार है वो बंद कर दिया है। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं पीछे क्या छोड़ रहा हूं अपने जेनरेशंस के लिए, क्या हम कभी सोचते हैं? खाली इतना कि भाई एक विल बना दो और तीन बच्चे हैं तो उनके लिए निकाल के रख दो बस, बाकी उनके लिए क्या छोड़ा? तो ये बातें जो बहुत अंदर की है, गहराई की है, वो आज हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं इस भीड़ में भूल गए हैं, कहीं हम खो गए हैं, ऐसा लगता है। साइड सीन्स में अटक जाएंगे, तो इसीलिए जब तक ये द्वार खुल नहीं जाता है ना, भगवान के संबंध का भी अनुभव उतना ही कम होता है। भले कितना भी प्यार क्यों ना हो, हमें भी भगवान अभी भी कहते हैं, बच्चे तेरा प्यार मेरे लिए 100% है, उसे मैं 100% मार्क्स देता हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वैसे बनने में आप कहां तक बने हो, तो वहां बहुत बड़ा गैप है ना। तो जब तक एक कहते हैं ना, हम परमात्मा के रिफ्लेक्शन है, जैसे पानी में नहीं रिफ्लेक्शन दिखता है, तो अगर बहुत पानी मना ऐसे हो रहा है तो उसमें फिर अपना रिफ्लेक्शन इतना क्लियर नहीं होता है, तो मजा नहीं आता है। एकदम क्लियर रिफ्लेक्शन चाहिए, आईने पर धूल होगी तो मजा नहीं आएगा, एकदम क्लियर आईना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देख सके। ऐसे ही हमें भी भगवान के रिफ्लेक्शन अगर बनना है तभी हमको वो संबंध फील होगा। नहीं, दो मित्र कैसे बनते हैं, जब कुछ ना कुछ कॉमन फीचर होता है साथ में तब वो मित्र बनते हैं। तब तक वो मित्रता नहीं होगी, पहचान होगी, कभी देखा होगा, कभी मिला होगा, पर वो मित्रता नहीं होगी, वो घनिष्ठता नहीं होगी संबंध के अंदर। ऐसे हमें अपने आप को जांचना है कि हाँ, मैं गई थी वहां, बहुत मुझे अच्छा अनुभव हुआ, मुझे बहुत शांति फील हुई। हाँ, 4 साल पहले मैं बद्रीनाथ गई थी, वहां भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे ये अनुभव हुआ था, मेरी ये इच्छा पूरी हुई थी। पर घनिष्ठता क्या ये इंपॉर्टेंट है? हम सब जब ब्रह्मा कुमारी में आए ना, तो हम सबको भी ये सब्जेक्ट जो है ना कभी सूझा ही नहीं था। कोई छोटेपन में आए, कोई बड़े रूप बड़े आयु में आए, पर सूझा नहीं था कि इतनी घनिष्ठता। बहुत कम लोगों के अंदर ये तीव्र इच्छा थी कि मुझे अब बस भगवान को पाना है, मुझे भगवान कौन है क्या है यही जानना है, मुझे और कुछ दुनिया से अपेक्षा नहीं है। बहुत कम होते हैं ऐसे, बाकी सब तो दुनिया की ही भीड़ में दौड़ते होते हैं। यहां आके पता चला ऐसा भी होता है, केवल क्राइस्ट, केवल बुद्ध, केवल गुरु नानक जी, केवल मदर टेरेसा, केवल गिने चुने लोग वो घनिष्ठता का अनुभव करे, ऐसा नहीं। जिसको भी करना है कर सकते, वो सब भी हमारे ही लेवल से आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी तक हमको यही अनुभव है कि अगर ईश्वर की बात करेंगे, ईश्वर की नजदीकता की बात करेंगे, तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, हमें भी ये बहनों की तरह अपना ड्रेस बदल के यहीं रहना पड़ेगा, वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पर यहां हमें ये जानने को मिला कि ये आपका चॉइस है, आपको क्या करना है, क्योंकि ये भी एक रोल है। बीके ब्रह्मा कुमारी के रूप से एक रोल बजा रहे हैं। आंतरिक रीत से मंजिल कौन सी है? आंतरिक रीत से जो गृहस्थ में रह करके भी करते हैं और जो हम सेंटर पर डेडिकेटेड है, मंजिल एक ही है, अलग नहीं है। तो उस मंजिल के लिए जरूरी नहीं है संसार छोड़ के ही प्राप्त होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, नहीं तो वो हमें संसार में भेजता ही क्यों? सिंपल, अगर वो चाहता कि हम संसार छोड़ दे तो फिर वो भेजता ही क्यों हमको? कहते ना, भगवान का संसार है रचा हुआ और हम सब आए हैं, तो उनको तो और प्यार होगा। हम संसार में अपना खेल कर रहे हैं, भगवान को तो और प्यार होगा, वो क्यों कहेगा छोड़ दो? नहीं, उनको जो कराना होगा उसके प्रति वो जो मार्गदर्शन देते हैं वो अलग बात है। अगर उनको लगता है कि मेरे द्वारा वो कुछ कुछ ऐसा करा सकते हैं तो वो मार्गदर्शन देंगे, और उस समय मैं ना भी नहीं बोलूंगी। एक सेकंड में मेरा क्या होगा? हाँ जी। उस समय कोई सोचता नहीं है, प्लानिंग नहीं करता है कि भगवान आप मुझे कह रहे हो तो अभी मैं है ना थोड़ा प्लान करके आती हूं, थोड़ा सोच के आती हूं, थोड़ा एडजस्ट करके आती हूं, थोड़ा सेटल करके आती हूं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो रियलाइजेशन की बात है। तो परमात्मा के सुसंगति में रहना, ये जीवन जीते हुए जो भी आपका पार्ट है उसमें बजाते हुए हम कर सकते हैं। हमें ये मौका मिला है, अब हमको ये मौका कहां तक लेना है वो अपने ऊपर है। अब वो आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे वो मौका लेना है या नहीं, क्योंकि कल तो होता ही नहीं है ना, कल तो होता ही नहीं है। याद है ना वो महाभारत की कहानी, जब युधिष्ठिर ने, बहुत दानी होते हैं तो हमेशा दान के लिए लाइन लगी हुई होती है, उस दिन युधिष्ठिर जी को और कुछ काम याद आ गया तो थोड़े ही बचे थे, फिर भी उन्होंने कहा मैं कल आता हूं फिर से, वो भी छोड़ के जाना चाह रहे थे। तो भीम ने तो सब जगह अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, युधिष्ठिर जी तो अमर हो गए हैं, युधिष्ठिर जी तो अमर हो गए हैं। जब ये बात युधिष्ठिर जी के कान में आई तो वो सोच में पड़ी, भीम कर क्या रहा है, ऐसे क्यों कह रहा है युधिष्ठिर जी अमर हो गए हैं। तो उसने पूछा, तो भीम कहते हो मैंने आपके ही मुख से सुना, आपने कल नहीं बोला, जब सब खड़े थे आप दान कर रहे थे आपने कहा भी मैं कल करूंगा, आपको पता होगा ना कल आने वाला है, इसीलिए तो आपने बोला होगा, इसलिए मैंने बोला हमारे युधिष्ठिर जी तो अमर हो गए हैं। हमको किसी को भी पता है कल आने वाला है? नहीं ना। आज सबसे सुंदर समय है, सोचो 100% ब्यूटिफुल टाइम, ऐसा समय आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सेकंड में जो अभी आपके साथ हो रहा है वो कभी नहीं होगा, और अगर कल होगा भी तो और अच्छा होगा ना। पर आज जो हो रहा है वो अभी का ही है, तो मुझे अभी जो विचार करना है वो सबसे अच्छा विचार होना चाहिए। इसी में तो हम हार जाते हैं ना, हम सोचते हैं ना 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 पता नहीं, सीधा पता नहीं, लेकिन ये शब्द आ जाते हैं और इसलिए हम वो संकल्प को छोड़ देते हैं, आधे में छोड़ देते हैं, उसको कभी पूरा नहीं होने देते हैं। पर अगर कहीं तीर्थ पे जाना है और आपके फैमिली में रियली कुछ प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर बहुत दुख है कि मुझे करना है, आप उस तीर्थ धाम पर भले आपको नहीं मिले, ट्रांसपोर्ट नहीं मिले, आपको सुविधा नहीं मिले, तो भी उस समय आप क्या करेंगे? एक बल एक भरोसा करते हैं ना, एक बल एक भरोसे में पहुंच जाएंगे, जी लेंगे, वहां तक पहुंच के आ जाएंगे, जरूर वो कर। लेकिन आजकल वही 365 डेज करना हो तो क्यों ऐसा कहते हैं हम? जो एक दिन आपने किया वो 365 डेज के लिए हम क्यों मना करते हैं? कई लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं, भगवान के लिए ही ना, भगवान खुश हो जाए। चलो ठीक है, वहां भी मनोकामनाएं समाई हुई है, चलो वो छोड़ो, 40 दिन का उपवास। लेकिन अगर वो ही 365 डेज करना हो तो नहीं, फिर हम कहते नहीं मुश्किल है। वो मुश्किल शब्द क्यों आता है बीच में, कोई कारण आप बता सकेंगे? जो चीज आपने एक दिन की 100% की, उसके बाद आपको जैसे नहीं होता है, मनोबल कम हो जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, कहीं पर अपने अंदर की शक्ति काम नहीं करती है, ऐसा होता है ना, अंदर की शक्ति काम नहीं करती है, या हमारी और इच्छा है, बराबर है कि नहीं, वास्तव में हमारी और इच्छा है, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम फिर दौड़ने लगते हैं। ये तो अच्छा है पर मुझे तो ये करना है, और मजबूरी से कोई नहीं कर रहा है। पढ़ाई लिखाई हो कि न भी पढ़े, काम करे, धंधा करे, कुछ भी करे, चोरी करे, डाका डाले, कोई मजबूरी से नहीं कर रहा है, उसको करना है इसीलिए कर रहा है। हम ऐसे ही बोलते हैं संसार में आए हैं तो करना ही पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। हमें करना है इसीलिए हम कर रहे हैं। चलो एक व्यक्ति नहीं कर पाया, हिम्मत हार गया, उसकी बुरी हालत हुई, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। एक महीना, एक साल, पांच साल, पांच साल के बाद अगर उसको कोई मिल गया, वो कहे मैं तेरे को संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरा इतना सा काम रोज करके दे, तेरे को वो भी नहीं होता तुम ये करके देना, ये भी नहीं होता सो जाना, मैं तेरा संभाल करूंगा, क्या करेगा? तुरंत खड़ा हो जाएगा, डिप्रेशन बिल्कुल गायब हो जाएगा, एकदम उसको सिक्योरिटी फील होने लगेगी, उसकी हालत सुधरती जाएगी। क्यों? उसको पता चल गया आप मुझे तो कोई मदद करने वाला है। माना ये जो हम हिम्मत हार जाते हैं, डिप्रेशन तक, सुसाइड तक भी जो हम चले जाते हैं, वो केवल क्षणिक विचार है, वो कोई परमानेंट नहीं है, पर उस समय इतनी हिम्मत हार जाते हैं कि हो जाता है। तो हम यहां जो भी कर रहे हैं आज की तारीख में, हम चाहते हैं इसीलिए कर रहे हैं, किसी और पर दोष नहीं डाल सकते कि इस मजबूरी के कारण मैं कर रहा हूं, उसके कारण मैं कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए मैं कमा रहा हूं। कितनी गलत बात है। पहले तो हम खुद अपने सर्वाइवल के लिए तो काम कर रहे हैं ना, तो कोई का भी हम दोष नहीं निकाल सकते हैं, हमें करना है इसीलिए हम कर रहे हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि जो हमेशा आपको देता रहे, रोज आप उनके पास जाते और कोई ना कोई चीज देते हैं, कभी कुछ खाने के लिए दे दिया, कभी पैसा दे दिया, कभी एक कपड़ा दे दिया नया, कभी एक स्कूटर दिला दिया, एक कुछ भी, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा है ना? कोई हमको रोज दे, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? भले हम नहीं किसी को रोज दे सके, लेकिन अगर कोई हमें देता है हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कोई छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा ना। इवन सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति बोलेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत प्यार से कोई देगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला भी ले लेगा, ठीक है आप बोल रहे हैं ना तो आज ले लेता। तो परमात्मा कौन सी हस्ती है? परमात्मा कौन सी हस्ती है? कभी लेता नहीं। हम सोचते हो हमने वो भंडारी में, वो बॉक्स में, मंदिर में डाला, हमने ये सोने का दान किया फलाना, वो क्यों लेके क्या करेगा, कहां रखेगा? उनके पास तो कोई ऐसी जगह नहीं, कोई कबाट नहीं, कोई तिजोरी नहीं जिसमें वो रखे, तो वो तो कुछ लेता ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं? सजा देते हैं। तो उनको क्यों नहीं प्यारा लगेगा सदा देने वाला? वो यहां तक कहते हैं कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्यों? मेरा वो संस्कार ही है देना। सूर्य क्या करता है? आप मांगते हो रोज एक किरण दे दो, एक किरण दे दो, उसका काम ही है देना। आप ना बोलेंगे, आप घर में बैठे रहो, आपकी मर्जी है, पर्दे बंद कर दो, सूर्य नहीं रुकेगा अपने किरने देने के लिए। वो कहता मेरा तो काम ही है, आप दो ना दो, मुझे वो नहीं देखना है, मुझे देना है। भगवान तो ऐसी हस्ती है, देता ही रहता है। समझो आपकी, आपको एक ऐसी चीज मिले जो आपके तिजोरी को हमेशा भरपूर रखे, तो क्या होगा? कितना अच्छा लगेगा, सारा टाइम जब भी खोलो तभी फुल, जब भी खोलो तभी फुल, है कि नहीं? पर हम वो तिजोरी की बात नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो तिजोरी तो फिर हमको आलसू बना देगी अगर वो तिजोरी भरी रही तो सारा टाइम। लेकिन भगवान जो तिजोरी भरता है ना, वो ये वाली है, मन और बुद्धि की, ये भरा रहेगा ना तो आपको कभी नेगेटिव थॉट नहीं आ सकता। कितनी अच्छी बात है, हम तो सब नेगेटिव थॉट से अभी थक गए हैं ना, हार गए हैं, हमको करना ही नहीं है नेगेटिव थॉट, अरे वो हमको ही दुख दे रहा है, और तो सब आराम से खाओ पियो मौज कर रहे हैं, और मैं देखो हमेशा नेगेटिव थॉट लेकर के दुखी हो रहा हूं। तो जो व्यक्ति हमें सदा के लिए यहां फुल कर सकता है, मैं उसकी सुसंगति क्यों ना करूं, मुझे तो उसमें कोई खर्चा नहीं है। बिना खर्चे के अगर कोई ये मुझे भरपूर कर देता है तो मैं क्यों नहीं करूं। तो पहले है ना, ये हमको महसूस होना चाहिए कि मुझे क्या मिल सकता है, और वो अल्पकालीन है या मुझे आत्मा को संतुष्टता देगा, सदा के लिए मुझे संतुष्ट कर देगा। फिर भी भगवान ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें कि अच्छा ठीक है आपको अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बात नहीं है। हमें फिर भी लक्ष्य से जीना तो है, पर एक भरपूरता होती है ना, उससे जीने में जो खुशी और आनंद और एक प्रकार की प्रसन्नता होती है ना, वो खोखलेपने में नहीं है। अल्पकालीन आप कितना भी कर लो वो उसमें नहीं है। तो हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना, क्या मैं संसार में रहते परिवार के साथ रहते जिम्मेवारी संभालते ऐसा भी जी सकता हूं जिसके लिए मुझे सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, और मेरा हक है संसार का एक मेंबर होने के, मेरा ये हक है कि मैं ऐसे जीऊं रिस्पेक्टफुली जिसको बोलेंगे, तो वो हमें परमात्मा अनुभव कराते हैं। आप अपने एक फैमिली मेंबर या किसी को हमेशा पूछने जाते हो भाई इसका क्या, वो कोई पता नहीं, हर प्रश्न आप पूछो वो कहेंगे इसको जाके पूछो मुझे नहीं पता, कैसा लगेगा। चौथी बार पांचवी बार तो उसके पास जाना ही अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या मैं हमेशा कुछ पूछने जाती हूं पता नहीं, या आधा बता के छोड़ देंगे, है कि नहीं। कोई पूरा बता सकता है कभी भी, है कोई संसार में व्यक्ति जो पूरा बताए, है नहीं, क्योंकि वो शक्य ही नहीं है, कोई आपको पूरा नहीं बता सकता है। हमेशा हरेक की एक आधी स्टोरी होती है, एक 1/4 स्टोरी होती है, पूरी स्टोरी तो कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि हरेक ने अपने मंतव्य से अपने विचार से कुछ किया और उससे जो पाया वो शेयर किया। पर परमात्मा एक अलग ही हस्ती है, उसे सब पता है, सब पता है। आपके मन में अभी तो संकल्प नहीं आया, पहुंच गया, और उसका उत्तर भी रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, सब पता है। कभी कभार हमको लगता है पता नहीं इसमें क्या होगा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जब चीज हो जाती है ना उसके बाद हम कहते हैं अब पता चला किस कारण से हुआ, पर वो कारण परमात्मा को पता था। चलो ठीक है हमें नहीं भी उस समय पता हो, लेकिन परमात्मा की सुसंगति से क्या फील होता है, मुझे पता है इसके पीछे मेरा कल्याण है। ये चीज इतनी स्ट्रांगली अंदर से आती है कि आपको वो विघ्न का दुख नहीं अनुभव होगा। अंदर से आपको एक निश्चय बैठ जाता है, अंदर से फील होता है, मैं ये नहीं बोलती हूं ब्लाइंड फेथ नहीं बोल रही हूं, अंदर से आपको फील होता है, अंदर का मन आपको कहता है जरूर इसके पीछे कोई बहुत अच्छा कारण है, इसके लिए हुआ ऐसा। तो इससे भी हमें जीवन बहुत सुरक्षित फील होने लगता है, जो इतने सारे प्रश्न जीवन में उठते हैं ना वो फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जब हम अनाथ आश्रम में जाते हैं तो कैसा फील होता है, अलग फीलिंग आती है ना कि बेचारे इनके पेरेंट्स नहीं है, इनको कोई संभालने वाला नहीं है, कोई पालनहार नहीं है। जब हमारे पेरेंट्स भी नहीं रहते हैं तभी कैसा होता है, तब हम कहते हैं एक बार तो कि बड़ों का साया कितना इंपॉर्टेंट है, फिर होता है उनके जाने के बाद। तो परमात्मा तो सबके पेरेंट है, माता पिता है, सुना। तो वो फीलिंग हमको कभी हुई है कि वो मेरे माता पिता है और ये माता पिता कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं खुद भी 90 साल की हो जाऊंगी तो भी ये माता पिता होंगे हमेशा के लिए। और दूसरे माता पिता से कई बच्चे तंग आ जाते हैं, जब वो ओल्ड हो जाते हैं, वो नहीं कुछ कर पाते हैं तो बच्चे तंग होने लगते हैं, उनको लगता भी इनको ओल्ड एज होम में रख दे, बहुत तंग कर रहे हैं। इनके साथ ऐसा भी नहीं होगा, सदा ही वो जो है जैसे है वैसे ही रहते हैं, तो तंग होने की बात भी नहीं है। तो अंदर से आपको फील करना है कि कहीं मैं अपने माता पिता से जुदा हो गई हूं, ऐसे फील करने की जरूरत है अपने आप से बात करके कि मैं कहीं अपने माता पिता से जुदा हो गया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें तरंगों में लहरों में ये बात को फील ही नहीं कर रही हूं। फिर ये है कि कोई को बहुत अच्छा कोई व्यक्ति मिल जाता है, पढ़ा लिखा अनुभवी, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है कि इससे मुझे बहुत सीखने को मिलेगा, इससे अनुभव से मेरा जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अगर आपको प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिले या आपको कोई बहुत महान संत से मिलने का मौका मिले तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हमें बहुत कुछ इनसे प्राप्त होगा उनकी लेवल के हिसाब से। तो परमात्मा तो सबसे ऊंची हस्ती है, तो क्या हमको कभी भी फील नहीं होता है? क्या हम भगवान को इसी सब्जेक्ट में रखेंगे कि जब भी दुख हो तो सिमरण करना है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखने समझने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना? तो परमात्मा सबसे ऊंची हस्ती है, ये मन में लाना है पहले कि मुझे क्यों चाहिए, क्यों उनका संबंध मुझे लाभदायक होगा, क्योंकि वो सबसे ऊंची हस्ती है, वो सदा परे रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों? माँ बाप भी बच्चों को बड़े करते ना, फिर एक आश रहती है, कौन सी आश रहती है माँ बाप को? मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, मेरे को संभाले, ये आश रहती है ना। परमात्मा तो सदा परे, उपराम, बियॉन्ड, कभी उनको ये सब होता ही नहीं है। कितना अच्छा, उनको कोई ऐसी अपेक्षा है ही नहीं, और अपेक्षा है तो हमारे ही अच्छाई के लिए, उनके लिए कुछ नहीं। मेरे लिए तुम ये करो ये नहीं आता है कभी भी, तुम खुद रियलाइज करो और करो, मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तुम जो करोगे तुम अपने लिए करोगे, तो वो उमंग उत्साह अपने लिए लाओ। तो इसीलिए परमात्मा जो है ना सदा उपराम, कोई स्वार्थ नहीं। कितनी बार हमने भूले की होंगी अब तक, कितनी भूले तो हम भूल भी चुके हैं, उनको याद रहते हुए भी भूल जाते हैं, कमाल है ना, वंडर है बात की। हम तो भूल जाते हैं बहुत सारी भूले, वो नहीं भूलते हैं तो भी भूल जाते हैं। हमेशा फॉरगिविंग, एक सेकंड में थोड़ा हमने कुछ नहीं किया, माफ, चलो आगे बढ़ो, चलो ठीक है इतनी बड़ी भूल की, चलो वो भी मैं माफ करता हूं और आगे बढ़ो। ऐसा कौन मिलेगा आजकल जॉब में? इनसिक्योरिटी, एक भूल की तो अभी निकाल देगा बॉस, तो यही डर रहता है अंदर, कभी निकाल देगा। परिवार से कब हमको कोई निकाल देगा बाहर वो भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी होता है, एक भूल भी कोई माफ नहीं कर सकता है आज संसार में। और भगवान तो चलो माफ, आगे बढ़ो, फिर रिपीट नहीं करना बच्चे, फिर रिपीट होता है, फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, पास्ट इज पास्ट, चलो मैं भूल जाता हूँ, अब तुम फिर ये रिपीट नहीं करना, ऐसे करो वैसे करो। फिर कभी कभी अपने जीवन में कड़वा अनुभव आता है तो हमको रियलाइज होता है, हाँ मैंने इतनी सारे भूले की ना, आज मेरे को देखो ये मुझे सहन करना पड़ा या ये सामना करना पड़ा या ये विघ्न मेरे जीवन में आया। तो कभी कभी भगवान की ये रीत भी होती है कि हम ऐसा नहीं समझ रहे तो ऐसा समझाए, लेकिन वहां भी उनकी माफी ही है अगर रियलाइज करो तो। ऑलवेज फॉरगिविंग। तो ऐसे प्यारा व्यक्ति क्यों नहीं हम संबंध रखेंगे जो हमें हमेशा माफ करे। बड़ों के साथ, बड़ों के प्रति हमेशा अपने को रहता है, हुआ तो है मेरे से लेकिन इस बार वो मुझे माफ कर दे, हमेशा अंदर एक भावना होती है। तो जो कर सकता है उनको तो हम याद ही नहीं कर सकते करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये भी कारण है कि हम परमात्मा के साथ सुसंगति रखें। एवर लविंग, उनको ना घृणा है, उनको ना द्वेष है, उनको ना किसी से बदले की भावना है, ना वो किसी को गाली देते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं, ना किसी की ग्लानी करते हैं, कुछ भी नहीं। ये जो कथाएं हैं या स्टोरीज है वो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वे से बनाई कि भाई भगवान ने किसी को श्राप भी दिया, ये भी दिया, वो एक स्टोरी के रूप से बनाया गया है। परमात्मा की हस्ती कभी भी किसी को भी श्राप नहीं देती, किसी के लिए बुरा सोचती नहीं है। समझो मेरा नेचर है कि कभी बुरा नहीं सोचूं, तो बुरा नहीं सोचूंगी। कोई मुझे 100 गाली देगा ना तो भी मैं बुरा नहीं सोचूंगी, नेचर ही नहीं है बुरा सोचने का, है ना। ऐसा होता है ना, ऐसा अगर नहीं है नेचर बुरा सोचने का तो कोई कितना भी करेगा ना तो भी वो व्यक्ति बुरा नहीं सोचेगा, कि नेचर ही नहीं है बुरा सोचने की। तो परमात्मा तो एवर लविंग है। ऑल पावरफुल, शक्तिशाली। माना क्या कि हर एक शक्ति जो हमको जीवन में चाहिए, जैसे सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, परखने की शक्ति, जितनी भी साइलेंस की शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियों में वो भरपूर, ऑल पावरफुल। ऐसे नहीं किसी का खून करवा दिया, वो पावर है क्या भगवान के अंदर? वो पावर की बात ही नहीं है। जो मनुष्य आत्माओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जो शक्तियां चाहिए अपने अंदर, वो सारी शक्तियों में परमात्मा फुल है। तो इसीलिए अगर हम उनके साथ हैं तो हमें भी वो अनुभूति सहज हो सकती है, असंभव को भी संभव कर देते हैं। ऐसा आपने कई बार अनुभव किया होगा ना कि एक्सीडेंट हुआ और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ जो कोई भी नहीं बचता था, लेकिन फिर भी किसी को इतनी सी भी चोट नहीं आई, तो उस समय किसको याद करते? भगवान को। न मानने वाला भी याद कर लेगा। एक बार एक फ्लाइट का पायलट, बिल्कुल माना बिल्कुल भगवान में उनका विश्वास नहीं था, उनकी वाइफ बोल बोल के थक गई, लेकिन बोले नहीं तुम अपना करो ना, मैं तुम्हें कहां रोकता हूं, मुझे इस सब्जेक्ट में बिल्कुल जाना नहीं है, मैं मानता नहीं हूं। और उसको इतना गर्व था ना अपने फ्लाइट पर, फ्लाइंग पर, और कितना अनुभव हो चुका था एज अ पायलट, तो हमेशा सक्सेसफुल रहे। पर कभी कभार तो जीवन में ऐसा अनुभव होता है ना, तो एक बार उनके जीवन में भी हुआ, और वो इतनी ऊंचाई पर थे और जब लैंड करना था तो उन्होंने देखा कि फॉग के कारण, धुम्मस होता है ना, उसके कारण वो फ्लाइट कहीं भी लैंड नहीं हो पा रही थी। कितनी जगह जा जा के ट्राई किया, और अभी इतनी जगह आप जाएंगे तो फ्यूल तो कम होता ही जाएगा, तो अब फ्यूल बिल्कुल कम मात्रा में थी। अब अगर वो लैंड नहीं करते हैं तो गए काम से, पूरे बना फ्लाइट क्रैश हो जाती, पूरे पैसेंजर्स मर जाते और सारी जवाबदारी इनके ऊपर आ जाती। तो उनको अंदर से उस समय हुआ कि मैं कैसे इन सब पैसेंजर्स को बचाऊं। तब उसने क्या बोला कि भगवान मुझे नहीं पता तुम कौन हो क्या हो, पर अगर तुम हो तो इस समय तुम मुझे कोई रास्ता बता दो। कुछ भी करो लेकिन इस फ्लाइट को बचा लो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। कहां से ये आवाज आई? उनकी वॉइस से नहीं, अंदर से आई। अंदर से सच्चाई की आवाज आई कि आत्मा ने कहा अगर तुम हो तो कुछ अभी करो। और सचमुच उस समय जो है एक जगह पर लैंडिंग उसी समय हुई और फ्लाइट बच गई, नीचे उतर के इंजन बंद हो गया, समझा। तब उसको लगा, एक बार फिर वो जब हमारे सेंटर पर आए वहां पर, तो फिर उन्होंने कोर्स वगैरह किया, तो भी उन्होंने काफी अनुभव सुनाए जिसमें वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे। और उसके हमारे पास आने के बाद भी आप अंधश्रद्धा से नहीं चल सकते हो, बिल्कुल नहीं चल सकते। एक महीना चल सकेंगे, दो मास चल सकेंगे, अंधश्रद्धा से यहां तो बिल्कुल नहीं चल सकते। सोच समझ के ही चलना पड़ता है, अपने आप से बातें करके, परमात्मा का साथ समझ के, फिर उनका लाभ लेके आगे बढ़ना होता है। वो तो रेडी है, कहते मेरे को पूरा यूज करो, आप फुल यूज करो, मैं आपके लिए हूं। पर आप मुझे भूल जाते हो। अब इसमें मेरा कहां दोष है? मैं तो आपको कोई ना कोई रीति से मेरी याद दिलाने की कोशिश करता हूं, अच्छी रीति से, बुरी रीति से। आपको अभी देखना है कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, है ना? मुझे कौन सी आंख खोलनी है? ये आंखों से तो नहीं दिखाई देगा, तो मुझे कौन सी आंख खोलनी है? अविनाशी है, न कभी मरते हैं, न उनको वापस जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे शक्तिशाली आत्मा जो है वो मेरे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट कार्य कर सकती है, क्या कार्य कर सकती है, परमात्मा का क्या कार्य है? जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, केमिकल लेते हैं, फिर उसमें एक और चीज, दो केमिकल्स के साथ एक और चीज ऐड करते हैं जिसको कैटलिस्ट कहा जाता है, जिससे वो जो केमिकल प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है, नहीं तो वही प्रोसेस बहुत टाइम लगाता। तो परमात्मा कहते हैं आप जो कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है, इस जन्म में भी गारंटी नहीं है, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो भगवान कहते इसी जन्म में आप मुझे एक कैटलिस्ट के रूप में यूज करो, मैं आपके इस विधि को सहज बना दूंगा। आप ये चाहते हो ना कि आप अपने सब कर्तव्य अदा करो, जो भी आपको मिला है पाठ आप अच्छी तरह अदा करो, और इसके लिए आपको बहुत उसके लिए कूटना ना पड़े, तो मुझे यूज करो, मैं कैटलिस्ट के रूप में आपको वो प्रोसेस, आपके जीवन की पद्धति को सहज बना दूंगा, फिर आप करना ना, क्योंकि हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही फल भोगना है। तो भगवान तो फल नहीं लेता, अच्छा या बुरा हमें ही लेना है, तो करना तो हमको ही है, पर वो प्रोसेस को इजी बना देता है। चाहिए कि हमारा जीवन इजी हो जाए? चाहिए ना? हम सब आजकल क्या चाहते हैं, ये पद्धति बदल जाए, दुनिया की ये रीत बदल जाए, ये सिस्टम बदल जाए, ये टेररिज्म खत्म हो जाए, चाहते हैं ना? पर सबसे पहली चीज हम अपने जीवन में ही नहीं करना चाहते तो बेचारे टेररिस्ट क्या करेंगे, कब जाएंगे, कब खत्म होंगे? उन्हें भी तो अपना जीवन परिवर्तन करना है ना। हमने तो कितनी बार देखा टेररिस्ट मरने के बाद भी और टेररिस्ट को जन्म देते हैं, तो उनका मरना कोई फाइनल चेंज नहीं है, उन्हें अब बदलना होगा अपने आप को। यही एक रीत है और कोई दूसरी रीत नहीं है दुनिया में। अभी भी हमारी पुलिस है ना, एक बार मुझे कह रही थी कि आप जो करते हो ना हम वही काम कर रहे हैं। मैंने कहा है आप कैसे वही काम कर रहे हैं? तो बोला हाँ आप सबको बदलने की कोशिश करते हो ना, हम एनकाउंटर से मार देते हैं, खत्म, गया, इजी हो गया। क्यों रखने का ऐसे लोगों को, हम वही काम कर रहे जो आप कर रहे, उसे कुछ खत्म होने वाला नहीं है, है कि नहीं? और ही द्वेष भावना, और ही सामना शुरू हो जाएगा, और ही खराब हालत होती जा रही है दुनिया की। हरेक को अपने को बदलना है, यही एक महामंत्र है, है ना? इसीलिए विंडो से मत देखो लेकिन मिरर में देखो, यही याद रखना है कि मुझे मिरर में देखना है। और ये संकल्प छोड़ देते हैं हम, एक बार परमात्मा की सुसंगति हो जाती है ना, फिर ये संकल्प छोड़ देते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दुनिया तो नहीं बदलने वाली है, ये मेरी वाइफ तो नहीं बदलने वाली है, मेरा पड़ोसी तो नहीं बदलने वाला है। लेट गो, छोड़ दो। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं खुद ही हूं ना, कि वो है कौन है सबसे इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में, मैं। कितनी बार यूज करते हैं ये शब्द, हाँ कभी गिनती किया है? मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हम है खुद, लेकिन जब ऐसी बातें आती है तब हम कहते हैं नहीं चलेगा ना, वही उसी समय हमको कहना है मैं। यहां पर हम कहते हैं अपने को, कहो कि मैं अर्जुन, माना मैं अर्जन करने वाला, फर्स्ट मैं। किसी को आगे बढ़ाना है तो पहले आप, नहीं कहीं जाना होता है रास्ते में भी हम पहले आप, कुर्सी देनी है पहले आप, पर जब ऐसी चीज करनी है ना तो फिर पहले। तो जब भगवान साथ में है ना तो ये चीज बहुत सहज हो जाती है, एंड यू लव डूइंग इट, आप बहुत अच्छा लगता है करने के लिए, उमंग उत्साह आता है। अगर मैं अच्छी बनूंगी तो पहली खुशी किसको होगी? मुझे होगी, मैं इतनी रिलीफ फील करूंगी, मुझे जो टेंशन, जो भार, जो बोझ फील होता है वो हल्का हो जाएगा, और मेरी खुशी से अनेकों को वह वाइब्रेशन मिलेगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम अपने लिए करते हैं ना तो इसमें स्वार्थ भावना बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। यही चीज दूसरों को भी बदलने में मदद करती है। तो भगवान की शक्ति क्या करती है, ब्रिज, जैसे वो कैटलिस्ट होते हैं ना, ऐसे ब्रिज बनते हैं वो। कल से आप सुन रहे हो, हाँ समझा, सुना समझा, फिर अभी यहां से आप जाएंगे, फिर जब करना पड़ेगा तब तो बाकी सब विघ्न सामने आ जाएंगे ना, सब कमजोरियां सामने आ जाएगी, नहीं कर सकते नहीं कर सकते, और एक ही हफ्ते के अंदर सब सोडा वाटर, फिर जैसे थे वैसे, कहेंगे क्या करे, जाते ही तूने बड़े प्रॉब्लम आ गए ना, कि ये बात तो सारी उड़ गई। भगवान हमें इसी में मदद करते कि आपने जाना, अब आपको करना है, मैं हूं ना, एटलीस्ट इतना याद रखू मैं हूं ना। और प्रार्थना करने से आप समझते भगवान कर लेगा, वो पद्धति नहीं है यहां, वो हमने नहीं समझा। हमने जो समझा है कि जब हम भगवान की शक्ति की मदद लेते हैं तो क्या होता है, एक अंदर की शक्ति पैदा होती है, आत्मा का मनोबल। किसी ने मनोबल शब्द यूज किया, बहुत अच्छा है, विल पावर, मनोबल, अपने अंदर की शक्ति वो बढ़ने लगती है। इसको मेडिटेशन कहते हैं ना, मेडिटेशन करो, 5 मिनट के लिए करो या 1 घंटे के लिए करो, क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। 5 मिनट भी अगर क्वालिटी हुई ना तो वो आपको वो 1 घंटे का भी फल दे सकता है। तो वो आंतरिक शक्ति ही वास्तव में कंट्रोल है। कंट्रोल शब्द तो बहुत भारी है ना, कोई हमको कंट्रोल कर रहा है ये सोच के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर ये कंट्रोल जो है वो आंतरिक शक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक कंट्रोल स्विच बन जाती है। किसमें? अपने संकल्पों में, थॉट्स में, अपने वर्ड्स में, शब्दों में, वाचा में, अपने कर्मों में और समय में, ये चारों चीजों में एक। और ये बिजनेस में तो चारों चीजें चाहिए ही चाहिए, चारों ही चीजें यूज होती है, या तो खर्च होती है या तो जमा होती है। अब आपको चेक करना है कि खर्च हो रही है ज्यादा, रात को जब सोते हैं तो टेंशन में सोते हैं, थके हारे सोते हैं, इसीलिए नहीं कई बार आकर के सीधा टीवी ऑन कर लेते हैं, अभी न्यूज आए तो गए काम से, फिर वही का वही हाल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फिल्म देख लेते हैं या कोई सीरियल देख लेते हैं, मालूम है ये आर्टिफिशियल है ये, लेकिन उसी से हम सोचते हैं हमारा टेंशन कम हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, हंसने का प्रोग्राम देख लिया, लाइट हो जाते हैं, तो हम सोचते फिर नींद तो आएगी, नहीं तो आज जो सारा हुआ है उसे नींद तो बिल्कुल आनी नहीं है, ऐसे ही हम सोचते हैं। और इसीलिए जो है हम ये चारों ही चीजों में जब परमात्मा की शक्ति यूज करते हैं ना, तो हम चारों का सदुपयोग करने लगते हैं, अंदर से कंट्रोल आ जाता है। अगर किसी को गुस्सा करने को मन भी करेगा ना, यहां तक आकर के आपको लगेगा जरूरी नहीं लगता है मुझे और तुरंत आपका बदल जाएगा, आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अपनी संवेदनाओं को दबाया, नहीं लगेगा, अचानक आपको फील होगा जरूरी नहीं लग रहा है, सोच के करता हूं कल बता दूंगा, ऐसे करके उस समय तो आप छोड़ ही देंगे। और आपको लगता है ये आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से थोड़ा फालतू लगता है, जोर से बोलना, गुस्सा करना, रोब दिखाना, ये आपको ऐसे फील होने लगेगा। नॉट बिकॉज कि वो व्यक्ति नहीं सुनता इसीलिए मुझे करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, आपको खुद की पर्सनालिटी के लिए फील नहीं होगा, फिर भी काम होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा जरूर, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति काम कर रही है अभी ज्यादा, पहले तो वो भी नहीं होती थी, चलो आप गुस्सा नहीं किए, आंतरिक शक्ति भी काम नहीं की तो रिजल्ट नहीं आएगी, यहां रिजल्ट आएगी जरूर, पर धीरज धीरज रखनी पड़ेगी, अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा धीरज रखनी पड़ती है। तो इसीलिए ये हमें अनुभव होगा परमात्मा के सुसंगति में कि ये जो चारों चीजें जो मुझे बनाती है, मेरे विचार, मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरा समय जो मुझे बनाती है, वो अभी जमा हो रहा है। भगवान की शक्ति जब काम करती है तब अगर मैं साइलेंस में रहती हूं, साइलेंस माना नेगेटिव थॉट नहीं, वेस्ट थॉट नहीं, वो साइलेंस, ऐसे नहीं बिल्कुल बोलने का ही नहीं, बिल्कुल सोचने का ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं है, ऐसी साइलेंस जब मैं कंट्रीब्यूट करती हूं अपने कार्य में, तो भगवान सामने से क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, पीस, शांति, वो पावर कंट्रीब्यूट करते हैं अपना। कहते हैं ना, आप अपने को मदद करेंगे, अपने में हिम्मत रखेंगे तो भगवान की मदद मिलती है, तो एक कदम हमको बढ़ाना पड़ता है, हजार कदम भगवान के होते हैं, तो वो एक कदम अगर साइलेंस का है तो भगवान की शक्ति पीस, शांति, आपको लगेगा, आपको फील होगा कि मुझे खुद अंदर एकदम शांति की फीलिंग हो रही है, शब्द भी ठीक निकलेंगे, कर्म भी ठीक होगा, आज ही मुझे करना है, अभी ही मुझे करना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो ठीक भी नहीं होगा काम, रिलेशन भी बिगड़ जाएंगे। अपनी तरफ से अगर शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, तो भगवान की तरफ से आपको वो शक्ति मिलेगी, आप किसी को माफ भी कर सकेंगे सहज रीति से, किसी को बदल भी सकेंगे प्रेरणा से, पर अपने अंदर क्या चाहिए उस समय, शुभ भावना, शुभ कामना। अगर हम एडजस्ट करते हैं, चलो इससे आज नहीं हो रहा है, ठीक है मैं कल इस रीति से कर दूंगा, अगर मैं एडजस्ट करती हूं तो भगवान भी हमें वो कार्य पूर्ण करने की हिम्मत देते हैं। कभी सोचा हमने ऐसा कि ऐसा भी एक कोलैबोरेशन है, एक पार्टनरशिप है, मैं ऐसा करूं भगवान ऐसे करे, इसमें कोई स्थूल तो चीज है नहीं, हमारे ही कर्म के लिए भगवान हमको शक्ति देता है, अगर हम धीरज रखते हैं तो भगवान हमारी प्लानिंग देख लेता है, इसलिए हम यहां ना बहुत प्लानिंग करते नहीं है, हम ही सारी प्लानिंग करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, उनको चाहिए कि हमारे लिए वो प्लान करे, तो फिर हमको देना चाहिए ना वो, तो उसके लिए हमको अपने अंदर धीरज बनाए रखनी चाहिए। अगर हम टेंशन में है, हम उद्वेग में है, तो भगवान हमारे लिए प्लान नहीं कर सकते, एक बार तो देखो करके, भगवान आज मैं आपकी प्लानिंग पे चलना चाहता हूं, मैं आज देखना चाहता हूं साक्षी होके आपने मेरे लिए क्या प्लान किया है। पर अगर आपका नेगेटिव ही आउटलुक होगा ना, तो अगर कोई ऐसा विघ्न आया ना, उस दिन आप बोलेंगे बस यही आपकी प्लानिंग है, आउटलुक हमारा है। भगवान के तो अलग अलग तरीके होते हैं, पर हम वो नहीं देख सकेंगे, हम वही देखेंगे बस यही आपको करना आता है मेरे लिए। जब भगवान की शक्ति काम करती है तो समय अपना सहयोग देता है। समय है ना, भगवान का बहुत अच्छा साथी है, बहुत अच्छा मित्र है। तो जब समय सहयोग देता है ना, तब जब हमारी अंदर की वृत्ति ऊंची हो, ऊंची, छोटा सा काम भी क्यों ना हो। अरे अच्छे अमीर घराने के लोग जब गुरुद्वारे में जाते हैं झाड़ू लगाते हैं, क्यों, क्या जरूरत है उनको झाड़ू लगाने की? उस समय वृत्ति बहुत लिफ्ट हो जाती है। और जब उससे झाड़ू भी मरता है ना, उस समय बहुत अच्छा अनुभव देता है, एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस देता है। लाख कमाया उसे, आज मैंने बहुत सारा कमाया, ऐसे फील हो रहा है। तो इस रीति से अगर हम समय को सहयोग देते हैं ना, समय हमें सहयोग देता है कब, जब हमारी वृत्ति ऊंची होती है। तो पहले तो वही चेक करना पड़ेगा कि कोई भी कार्य करने के लिए मेरी वृत्ति कहां तक है, क्वालिटी क्या है मेरी वृत्ति की, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, क्या चाहिए मुझे। उस आधार पर वो गिनती होगी ना कि वो उत्तम है, कनिष्ठ है कि मध्यम है। उस रीति से समय भी सहयोग देता है। और जब भगवान की शक्ति काम करती है तो हमें गुणों से, शक्तियों से कार्य करना अच्छा लगता है, साधारण कर्म करना अच्छा नहीं लगता है। गुण बिना एक भी कर्म का बीज बोना हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान की शक्ति काम कर रही है। और जब एक तरफ से आपको भगवान की शक्ति मिल रही है, एक तरफ से समय आपको सहयोग दे रहा है, फिर बताओ सक्सेस कितना दूर है, अपने गले का हार है। रानी की कहानी सुनाई थी कि रानी का हार खो गया था, अभी देखा तो गले में ही पड़ा था। बस यही बात है, सक्सेस अपने गले का हार है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कभी मत भूलना यहां से, सफलता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऊंची वृत्ति से काम करता हूं, समय मुझे सहयोग देगा। अगर मैं गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर कर्म करता हूं, भगवान की शक्ति मेरे साथ सदा होगी और मैं कभी निष्फल जीवन में हो नहीं सकता। ऐसी सफलता अनुभव करने वाले हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं हम ऐसा अनुभव करें। फिर भले लाख भी ना कमाया हो, एक दिन चलेगा ना, लेकिन सफलता चाहिए। सफलता हमारे दिल में महसूस होनी चाहिए, सफलता हमारे चेहरे पर होनी चाहिए, सफलता हमारे चलन में होनी चाहिए, सफलता हमारे दृष्टि में होनी चाहिए, मुख की मुस्कान में होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप भगवान की शक्ति को अपने जीवन में इतना एहसास करो और बहुत बहुत आगे बढ़ो। ओम शांति। एक मिनट हम फिर से इसी संकल्प में जाएंगे, पहले भी एक संकल्प में स्थित हुए थे, अभी फिर से, अभी जो सुना उसमें से एक संकल्प में स्थित हो जाए।
भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है।
ओम शांति। आदरणीय बीके क्रीना दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हम परमात्मा शक्ति से अपने जीवन को श्रेष्ठ और कल्याणकारी बना सकते हैं, कैसे उस परमात्मा के संग से कैसा रंग हमें चढ़ता है। परमात्मा जो सदा साथ रहने वाला है, सदा खुश करने वाला है, जो जन्म मरण से न्यारा है, सदा कुछ करने वाला है, सदा प्यार देने वाला है, उस परमात्मा का हमें संग करना है। अच्छा, तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।